दोस्तों, कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल किसी लेखक के कल्पना में रची गई एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं होता है। लेकिन अगर फिर भी इस कहानी के नाम, पात्र, जगह या कोई दृश्य किसी वास्तविक जीवन से मिलते हैं तो ये केवल एक संयोग है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही पढ़ें। राजा साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं इस हालत में कहाँ जाऊंगी? कम से कम अपनी बच्चे के बारे में तो सोचिए। अरुणिमा इस समय अपने पति आस्तिक रायचंद से खुद को ना छोड़ने के लिए भीख मांग रही थी, लेकिन आस्तिक ने अरुणिमा से अपना मुंह फेरते हुए कहा, मैं तुमसे कहा ना कि मेरा अब तुमसे और तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे से कोई रिश्ता नहीं है। सामने तलाक के पेपर रखे हुए हैं, चुपचाप साइन करो और निकल जाओ मेरी जिंदगी से। मुझे तुम्हारी परछाई भी अपने आसपास नहीं चाहिए। इस महल से जाने के बाद तुम्हारे साथ और तुम्हारे बच्चे के साथ क्या होता है, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। अरुणिमा को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। आस्तिक उसे ये कैसे कह सकता था, जबकि वो अच्छी तरह से जानता है कि अरुणिमा के पेट में उसका बच्चा पल रहा है। आज तक अरुणिमा आस्तिक के इशारों पर किसी कठपुतली की तरह नाचती थी, सिर्फ अपने परिवार की भलाई के लिए और इस उम्मीद से कि एक दिन आस्तिक उसे ज़रूर अपनाएगा। लेकिन आज आस्तिक ने उसके इस भ्रम को भी तोड़ दिया। अरुणिमा ने कांपते हाथों से पेन उठाया और डाइवोर्स पेपर साइन करते हुए अपना मंगलसूत्र डाइवोर्स पेपर के ऊपर रखते हुए कहा, शुक्रिया राजा साहब, मुझे अपनी कैद से आज़ाद करने के लिए। मुझे खुशी है कि आज के बाद मैं आपके हाथों की कठपुतली नहीं बनूंगी। आखिर क्या हुआ था अरुणिमा के साथ और कैसी है आस्तिक और अरुणिमा की ये उलझी हुई कहानी। एक साल पहले, सिंघल, राजस्थान। वैसे तो राजस्थान के सिंघल शहर में दुनिया की सबसे बेशकीमती और सबसे खूबसूरत मोती बनाई जाती है। सिंघल के मोतियों की बात ही कुछ अलग है। पूरे देश विदेश में हर जगह पर सिंघल के मोतियों की भारी डिमांड होती है। गहनों से लेकर कपड़ों तक में सिंघल के मोतियों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन सिंघल सिर्फ अपनी मोतियों के ही नहीं बल्कि अपनी कठपुतलियों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। सिंघल में कठपुतलियों का खेल काफ़ी प्रचलित है और आज भी यहाँ पर पारंपरिक तरीके से ही कठपुतली का प्रदर्शन किया जाता है। आज भी सिंघल के एक लोकल मार्केट के पास बने छोटे से खाली मैदान में कठपुतली का खेल चल रहा था। सारे बच्चे, जवान, बूढ़े सब मिलकर वहाँ पर कठपुतली का खेल देख रहे थे। वहाँ पर दो कॉलेज की लड़कियाँ भी खड़ी थीं जो कठपुतली का खेल देखकर काफ़ी खुश हो रही थीं। उन दोनों लड़कियों में से एक लड़की के चेहरे पर एक ना बयां करने वाली बेशकीमत मुस्कान थी। एक 24 साल की लड़की जिसकी आंखों में चमक, गालों में गुलाबी पान और कमर तक लहराते बाल, आसमानी रंग के पटियाला सूट सलवार में, माथे पर सिल्वर कलर की बिंदी लगाई हुई, वो लड़की बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी और उसके साथ ही खड़ी थी उसकी दोस्त ज्योति। ज्योति ने अपने साथ खड़ी लड़की के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखना अरु, अभी राजकुमार आएगा और इस राजकुमारी को अपने साथ अपने महल में ले जाएगा। अरु यानी अरुणिमा और ज्योति दोनों कॉलेज स्टूडेंट हैं और ये दोनों ही अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में हैं। ज्योति का ऐसा कहने पर अरुण मुस्कुराते हुए उस कठपुतली के खेल को देख रही थी, जहां पर सच में एक कठपुतली का राजकुमार आता है और उस कठपुतली की राजकुमारी को अपने घोड़े में बिठाकर महलों में लेकर जाता है। अरुणिमा के चेहरे पर यह दृश्य देखकर अनायास ही एक मुस्कान आ जाती है। ज्योति जब अरुणिमा को ऐसे मुस्कुराता हुआ देखती है तो उसके कंधे पर मारते हुए कहती है, ओहो मैडम, इस राजकुमार को देखकर अपने राजकुमार को इमेजिन करने लगी क्या? उसके बाद ज्योति अपने हाथ पर एक एक उंगलियों पर गिनते हुए कहती है, बता कहाँ का राजकुमार चाहिए, मेवाड़, माधवगढ़, चित्तौड़ या जयपुर? उदयपुर भी अच्छा है, तो कहे तो वहाँ के राजकुमार से बात चलाऊं तेरी। अरुणिमा हंसते हुए ज्योति के हाथ पर हाथ मारती है और कहती है, चुप कर नौटंकीबाज, मुझे किसी दूसरे राज्य में नहीं जाना। हमारा राज्य कितना सुंदर है, देखना सिंघल में क्या किसी चीज की कमी है, मुझे तो हमारे राज्य में ही रहना है। ज्योति भी हंसते हुए कहती है, अच्छा ऐसी बात है, तो चल ठीक है, यहाँ पर भी कौन सा राजकुमारों की कमी है। लेकिन यार सच बताऊं अरु, जो बात हमारे राजा साहब में है ना, वो किसी राजकुमार में नहीं है। हाय हाय, क्या बंदा है यार, इतना हॉट और हैंडसम राजा देखकर तो कसम से हर बार मेरी नीयत डोल जाती है। अरुणिमा अपनी आंखें बड़ी करते हुए ज्योति के कंधे पर मारती है और कहती है, बेशरम लड़की, कैसे नाम ले रही है राजा साहब का, तमीज से बात कर। मत भूल हम लोग उन्हीं के कॉलेज में पढ़ते हैं, अगर उन्हें पता चल गया ना कि उनकी कॉलेज में पढ़ने वाली एक स्टूडेंट उन्हें कैसी नजरों से देखती है, तो हमारे राजा साहब जितनी हैंडसम है ना उतनी ही डेंजरस भी है। ज्योति मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ हाँ मुझे पता है,
छोटी उम्र में ही उन्हें राजगद्दी मिल गई थी, इसीलिए तो इतने पत्थर दिल हुए बैठे हैं। कभी किसी लड़की के साथ उनका नाम नहीं जुड़ा है और ना कभी किसी कांड में फंसे हैं। तभी तो कितने सारे राज्यों की लड़कियां उनसे शादी करने के लिए एक पैर पर खड़ी है, पर वो है कि शादी का नाम सुनते ही दूसरे देश निकल जाते हैं। अरुणिमा ज्योति का इस तरीके से मुंह बनाते हुए हंसने लगती है। अरुणिमा ज्योति के साथ बात करने में मसरूफ थी और सामने चल रहे कठपुतली के खेल को बहुत ही चाव से देख रही थी, इस बात से अनजान कि दूर सड़क की दूसरी तरफ एक काली गाड़ी से दो आंखें अरुणिमा को घूर रही हैं। उसकी वो आंखें जो अरुणिमा को ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रही थी, काफी खतरनाक नजर आ रही थी। वो खतरनाक ग्रे आंखें जिनमें इस समय शून्य भाव का भाव दिख रहा था, चेहरे पर हल्की दाढ़ी लेकिन वो भी सेट की हुई, बाल तरीके से बने हुए थे और शरीर की बनावट तो ऐसी थी कि किसी को भी पहली नजर में अपना दीवाना बना ले। उसकी वो भूरी आंखें अरुणिमा को स्कैन करते हुए उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान ला रही थी। उसने अपने चेहरे पर एक डेविल स्माइल रखते हुए धीरे से कहा, कठपुतली, इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तभी आगे बैठे हुए शख्स ने, तुम कठपुतली देख रहे हो? उस आदमी के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी और उसने कहा, बेशक मैं कठपुतली ही देख रहा हूं, मेरी कठपुतली, एक ऐसी कठपुतली जो सिर्फ मेरे इशारों पर नाचेगी। उस आदमी के चेहरे पर एक खतरनाक एक्सप्रेशन थे और उसकी नजरें बस अरुणिमा को घूर रही थी। तभी उसके बगल में बैठे हुए आदमी ने अपना टैब आगे करते हुए कहा, राजा साहब, ये वही लड़की है। गाड़ी में बैठा हुआ ये शख्स है आस्तिक रायचंद, जो इस वक्त पूरे सिंघल का राजा है। आस्तिक की उम्र यही कोई 30 साल की होगी, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही डैशिंग और हैंडसम है। आस्तिक तब 11 साल का था जब उसे सिंघल का राजा घोषित कर दिया गया। अचानक से उसके नाना जी की मौत के बाद उसे राजगद्दी संभालनी पड़ी। सिर्फ 11 साल की उम्र में ही उसे राज्य का कारभार संभाला गया और उसने अपने बचपन को उसी दिन खत्म कर दिया जिस दिन उसने अपनी माँ को मुखाग्नि दी थी। अगले दिन से जो उस राजगद्दी पर बैठा वो था सिंघल का राजा आस्तिक रायचंद था, जिसके सीने में दिल ही नहीं था। आस्तिक ने बहुत से ऐसे काम किए थे जो सिंघल की भलाई के लिए थे। उसने कई लड़कियों के लिए कॉलेज और स्कूल खुलवाए थे, मेडिकल सुविधा और भी बहुत सारे ऐसे काम सिंघल में आस्तिक के राजगद्दी पर बैठने के बाद हुए थे। सिंघल की प्रजा आस्तिक को अपने राजा की तरह ही नहीं बल्कि अपने भगवान की तरह मानती थी, क्योंकि आज की तारीख में सिंघल में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके पास अपना रोजगार ना हो। छोटा बड़ा हर किसी को उसकी काबिलियत के हिसाब से आस्तिक ने रोजगार प्रदान करवाया था। पर सबकी भलाई करने वाला और सबके दिलों में बैठे का राज करने वाला ये आस्तिक रायचंद अपने अंदर एक ऐसा दर्द दबाए बैठा है जो वो किसी को बांट नहीं सकता है। राजा होने नाते वो कभी भी उस सिंहासन पर अकेला नहीं बैठा है, बल्कि उसके साथ उसकी जिम्मेदारियां भी बैठी है।
वो सिंहासन जिस पर बैठकर वो राज करता है, ये बात सिर्फ आस्तिक को ही पता है कि उसमें कितने किले लगी हुई हैं, और वो जिस ताज को पहनकर राजा बना है उसमें कितनी चुभन है, ये सिर्फ आस्तिक ही जानता है। आस्तिक की नजरें सिर्फ और सिर्फ अरुणिमा को देख रही थीं, और उस वक्त उसकी आंखों में कुछ था। उसने धीरे से हाँ में सर हिलाया और अपने साथ में बैठे अपने असिस्टेंट प्रकाश से कहा, मुझे लगा नहीं था कि मेरी कठपुतली इतनी सुंदर होगी, चलो अच्छा ही है, इस कठपुतली को नाचने में मजा आएगा। आस्तिक अपने आंखों में चश्मा पहनता है और ड्राइवर को गाड़ी ड्राइव करने के लिए कहता है। ड्राइवर के बगल में बैठा हुआ आदमी आस्तिक को देखकर कस के अपनी आंखें बंद कर लेता है। आस्तिक की गाड़ी वहां से निकल जाती है, लेकिन अरुणिमा और ज्योति अभी भी कठपुतली का खेल देख रहे थे। तभी अरुणिमा का फोन बजता है। अरुणिमा देखती है उसके घर से फोन है। वो ज्योति का हाथ पकड़ती है और जल्दी से घर की तरफ भाग जाती है, क्योंकि घर पर उसकी माँ उसे बहुत तेज डांटेगी, आज वो कॉलेज से बहुत लेट आई है।